ज्ञान सागर शिव बाबा की, हम योगी बच्चे हैं। जैसे हमसे कोई पूछता है आपका नाम क्या है, तो फट से अपनी देह का नाम हम बता देते हैं। कोई भी हमसे पूछे आप कौन हैं, मैं व्यापारी हूं, डॉक्टर हूं, वकील हूं, नहीं, पहला परिचय हमारी जुबान से निकलना चाहिए, मैं राजयोगी हूं। बड़ी विचित्र बात है, राजयोगी टाइटल कहें, राजयोगी का सर्टिफिकेट कहें, दुनिया में कहीं डुप्लीकेट नहीं बन सकता। बन सकता है? बन सकता है? कोई नया व्यक्ति आकर कहे मैं राजयोगी हूं, मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूं, नहीं कह सकता। आजकल दुनिया में बहुत से झूठे सर्टिफिकेट बन जाते हैं, पासपोर्ट बन जाते हैं, आई कार्ड बन जाते हैं, लेकिन ये राजयोगी का कार्ड बन सकता है? झूठा? क्या विचार है आप सबका? क्या विचार है? इतना ऊंचा ये परिचय, ये स्टेटस, ये सर्टिफिकेट, ये डिग्री कहें, बाबा ने हमको दी है, जिसका कोई डुप्लीकेट नहीं है। मान लो कोई थोड़ी देर के लिए ढोंग कर भी ले, ऐसे सफेद कपड़े पहन के आए, हाँ थोड़ा यूं बैठ भी जाए, थोड़ा हमारी ज्ञान की बात सुना भी दे, तो भी हम पहचान जाएंगे थोड़ी देर बाद कि नहीं, ये तो कुछ डुप्लीकेट मामला लग रहा है। योगी जीवन इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंचा जीवन है, जिसका कोई डुप्लीकेट नहीं। और ये स्वतः ही मिलता है, ये लेने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट में जाने की जरूरत नहीं। केवल एक बार अपने अंदर ये जागरूकता लानी है, अवेयरनेस लानी है, मैं कौन हूं, हमें अपने टाइटल तो याद रहते हैं ना, वर्मा शर्मा गुप्ता सक्सेना फलाना फलाना, अपना विजिटिंग कार्ड भी बनाया होगा, बहुत से भाई बहन उस पर शिव बाबा वाला लोगो भी डाल लेते हैं, लेकिन राजयोगी फलाना ऐसा नहीं लिखते, क्योंकि पूरे योगी शायद बने नहीं हैं। कहेंगे दुनियादारी में तो बहन जी वो दूसरा भी लगेगा ना, बेशक आप शर्मा वर्मा गुप्ता सब कुछ लगाइए, लेकिन जरा आगे राजयोगी तो लगा लीजिए। मान लो किसी ने पीएचडी की है, वो भी अपने आगे डॉक्टर तो लिख ही लेता है ना, चाहे वो डॉक्टर वो वाला डॉक्टर नहीं है जो मेडिसिन देते हैं, वो सर्जन नहीं है, लेकिन वो भी अपने आगे डॉक्टर लिखने में अपना गौरव महसूस करता है। क्या मैं अपने विजिटिंग कार्ड में राजयोगी लिखने में गौरव महसूस करती हूं? मैं राज योगी हूं। आप कहेंगे राजयोगी तो हैं, लिखने की क्या जरूरत है, फिर आप जो हैं वो हैं, फिर विजिटिंग कार्ड की क्या जरूरत है। राजयोगी का टाइटल अपने साथ लगाने से हम स्वतः ही गहन योग की अवस्था में जा सकते हैं। डॉक्टर होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, जो जिस चीज का डॉक्टर है वो मेडिसिन देना शुरू कर देगा, राजयोगी क्या शुरू करेगा, दूसरों को योग सिखाना शुरू करे ना करे, लेकिन स्वयं पर बहुत बड़ा चेक, बहुत बड़ा ब्रेक जरूर लगेगा। मान लो मैंने किसी को कार्ड दिया राजयोगी सुषमा, और मैं बैठ के, मान लो ट्रेन में जा रही हूं और मैं बैठ के कोई नॉवल पढ़ रही हूं, या बाहर का मैगजीन, कोई भी, कितने प्रकार के मैगजीन्स हैं वो पढ़ रही हूं, बताइए मेरे पे चेक लगेगा या नहीं लगेगा? खुद ही लगेगा, अरे मैंने इसको परिचय कराया, मैं राजयोगी हूं। अब ये पूछेगा, अच्छा बहन जी राजयोगी नॉवल पढ़ लेते हैं क्या? आप कहेंगे हम दुकानदारी करते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, लेन देन करना पड़ता है। सचमुच हमारे कर्मों पर ये एक बहुत बड़ा ब्रेक है। जैसे शहरों में हम रहते हैं ना, तो बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं, मेन सड़कें, मेन रोड्स जो होती हैं, वहां स्पीड ब्रेकर्स बने होते हैं। आप बहुत तेज जा रहे हैं, चाहे साइकिल है, बाइक है, कार है, कोई भी चीज है, आप तेजी से जा रहे हैं। अब वो स्पीड ब्रेकर आ गया, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसी स्पीड से जाएंगे या थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे? थोड़ा सा एक बार ब्रेक जरूर लगाएंगे, नहीं तो उछल जाएंगे। और कई बार लोगों को मालूम नहीं पड़ता है तो कोई कोई बाइक साइकिल उछल के एकदम गिर भी जाते हैं, होता है ना, ऐसे भाइयों को अनुभव होगा बहुत। हमारा भी ये स्पीड ब्रेकर है, राजयोगी फलाना। बहुत भाई बहन जब से भट्टी में आए हैं पूछ रहे हैं, बहन जी कैसे आत्मिक स्थिति में रहे? बाबा ने जो ये युक्ति बताई है, बच्चे हर घड़ी अपना बैज अपने साथ लगा के रखो। एक बार एक भाई ने मुझे कहा, बहन जी जब मैं ऑफिस में जाता हूं ना, और मेरा अगर मूड ठीक ना हो, मुझे गुस्सा आ जाए, मैं बैज उठा के ना जेब में डाल लेता हूं। क्यों? लोग कहते हैं तू ब्रह्मा कुमार गुस्सा करता है, मैं बैज ही उतार के डाल लेता। माना ये ब्रेक हो गया ना। एक ने कहा, अगर मेरे बच्चे बहुत तंग करते हैं, वो ज्ञान में नहीं है, और कहते हैं पिक्चर देखने चलो, तो मैं अपना बैज जेब में डाल लेता है। ऐसा आप लोगों को भी अनुभव? माना ये बैच लगाकर हम पिक्चर हॉल में हैं, टिकट खरीद लेंगे तो भी नो एंट्री, अपना मन खाएगा, कोई देख तो नहीं रहा है, कहेगा ब्रह्मा कुमार कुमारी बैच लगा हुआ है, ये तो पिक्चर हॉल में बैठा है। तो हमारे कर्मों के आगे स्पीड ब्रेकर्स बाबा ने बहुत बनाए हैं, लेकिन हम यूज नहीं करते हैं, जिस कारण हम बार बार परेशान होते हैं, पूछते हैं ये आत्मिक स्थिति क्या है, कैसे अपने को आत्मा समझे। जब मैंने अपने नाम के आगे राजयोगी लिख लिया ना, स्पीड ब्रेकर एक बन गया। राजयोगी ज्यादा नहीं बोल सकता, राजयोगी फालतू नहीं बोल सकता, राजयोगी अमृत वेले सो नहीं सकता, राजयोगी उल्टा सुल्टा कर्म लड़ाई झगड़ा तेरी मेरी कर नहीं सकता। तो अब ये देखना है मैं राजयोगी जीवन वाला हूं, राजयोगी जीवन वाली हूं, या राजयोग सीखने वाली कौन? एक बार अव्यक्त बाबा ने कहा था तुम्हारा नेचुरल राजयोगी जीवन ब्राह्मण जीवन होना चाहिए। तो हमारा नेचुरल जीवन कौन सा है? नेचुरल तो वो दुनिया वाला जीवन है, ये राजयोगी जीवन नहीं है। इसलिए थोड़ी जो है ना कशम कशा हो रही है। योग करते हैं, अमृत वेला करते हैं, शाम को योग करते हैं, मन बहुत एकाग्र हो जाता है, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन बाबा जो चाहता है आत्मिक स्थिति हो वो नहीं होती है। क्योंकि मैंने दो चीजें बना रखी हैं, जैसे हम कहते हैं ना जब हम द्वापर युग में आए तो धर्म अलग हो गया कर्म अलग हो गया। धर्म वाले साधु सन्यासी धर्म का प्रचार करने लग गए और कर्म वाले अपने संसारिक जीवन में परिवारों में रहने लग गए। सत्ययुग और त्रेता में धर्म और कर्म दोनों इकट्ठा था, देवी देवता धर्म था ना, दिव्य गुण से युक्त थे, इकट्ठा था, तो जीवन बड़ा सुखी था। जैसे हमने धर्म और कर्म को अलग किया दुखी हो गए। अब ये संगम युग है, नई सत्ययुगी दुनिया की स्थापना हो रही है जहां धर्म और कर्म का संतुलन होगा। धर्म क्या है? धर्म माना धारणा, धर्म माना हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं स्त्री पुरुष नहीं, धर्म माना धारणा। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है आप क्या कहते हैं? कहते हैं बहन जी इसका विश्वास नहीं करना, इसका तो धर्म है झूठ बोलना। अब आप मुझे बताइए झूठ कोई धर्म होता है क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या जातियों में भी ब्राह्मण बनिया ये तो सुना है, झूठ कोई जाति या झूठ कोई धर्म सुना है आपने तो बताइए? लेकिन वो व्यक्ति विशेष का एक गुण है जो हर घड़ी उसमें काम कर रहा है, तो कहते हैं इसका धर्म ही झूठ बोलना है। कोई दानी प्रवृत्ति का है कहते हैं इसको कौन रोक सकता है, इसका तो धर्म है दान करना। अब दान कोई धर्म होता है क्या? मैं हिंदू परिवार में पैदा हुई हूं, अब मैं आज से कहती हूं आपको कि भाई मैंने तो हिंदू धर्म छोड़ दिया, तो बहन जी आप क्या बन गए? मैं क्रिश्चियन बन गई हूं। अच्छा तो क्या करेगा क्रिश्चियन? क्या करेगा? क्या करेगा? संडे संडे चर्च में जाएगा, बाइबल पढ़ेगा, वो क्रिश्चियन हो गया। हिंदू रोज मंदिर में जाएगा, तिलक लगाएगा, धूप अगरबत्ती करेगा, वो हिंदू हो गया। तो हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन या सिख बौद्ध जैन क्या है? जिसने जिस धर्म विशेष के गुणों को धारण किया, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, संडे संडे चर्च जाना शुरू किया, कहेंगे ये बहन जी ना क्रिश्चियन है। अब मैं कौन हूं, पूछो अपने आप से, मैं कौन हूं? मैं राजयोगी हूं। तो राजयोगी का धर्म कौन सा है? राजयोगी का, या कहें गुण या लक्षण विशेष कौन सा है? राजयोगी वो है जो सदा शांत चित है और अपनी आत्मिक स्मृति में है। सदा शांत चित। अब मुझे शांत चित रहना है या नहीं, ये डिसीजन मेरा है। मैं कहती हूं मेरी तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मेरा तो स्कूल है, मेरा तो कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, दुकान है, 10 लोग मेरे नीचे काम करते हैं, वहां गुस्सा तो करना पड़ता है। हमने बहुत से लोग देखे हैं, हमारे पास भी वहां एक भाई आते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन के हैं, 6-7 साल से ज्ञान में हैं, इतना क्वाइट है। मैं कई बार उस भाई से पूछती हूं कि भाई साहब आपको कभी गुस्सा नहीं आता, कंपनी का प्रेसिडेंट है, तो मुस्कुरा देते। कोई काम नहीं हुआ तो केवल मुस्कुरा देते। ज्ञान में तो अब आया है 6-7 साल से, लेकिन उसका ये संस्कार तो नेचुरल है ना। तो कई बार मैं हंस के कहती हूं कि ये गुण तो हमें भी आपसे सीखना पड़ेगा। इतनी बड़ी पोजीशन वाला एकदम शांत, तो ऐसा नहीं है कि शांति से काम नहीं चलता है। राजयोगी माना सदा शांत, अपनी आत्मिक स्थिति में रहने वाला। अब जब तक मैं इस लक्षण को धारण ना कर लूं, मुझे आगे नहीं बढ़ना है। लंबी लंबी बातें ना करें। कई बार कई भाई बहन पूछते हैं, बहन जी ज्वालामुखी योग कैसे करें, बहन जी मन एकाग्र कैसे करें, बीज रूप कैसे बने। पहले हम ये देखें, मैंने आत्म निश्चय किया है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया शुरू शुरू में, मैं भी आत्मा हूं, यशोदा भी आत्मा है, फलाना भी आत्मा है, आत्मा 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 का लिख लिख करके भी अभ्यास किया। मैं रोज ये अभ्यास कितनी देर करती, हम तो करते ही नहीं है। योग में बैठते हैं, 2-4 बार कह लेते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, मुश्किल से 2-3 मिनट जाते हैं। और ये बीमारी हमारे ब्राह्मणों में, दुनिया वालों में, जहां तहां देखो यही बीमारी है। क्योंकि अंदर से दिल दिमाग ये मन बुद्धि सोया हुआ है, जागता ही नहीं है, थका हुआ है। आजकल तो कंप्यूटर एज है, हमारे भाई तो अक्सर करके कंप्यूटर यूज करते होंगे, बहुत सी बहनें भी। आप कंप्यूटर को खोलो, विंडो खोलो, कैसे होता है, धीरे 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 धीरे। मैं तो कहती हूँ अरे ये कंप्यूटर भी मनुष्य की तरह, जैसे कोई उठता है ना नींद, धीरे 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 आंखें खोलता है, अलसाई हुई आंखें। कितनी देर लगती है कंप्यूटर खुलने में, एकदम थोड़ी खुल जाता है। फिर खुलता है, फिर आप अपनी फाइल निकालते हो, फिर क्या क्या करते हो वो तो आप लोग जानते हैं। और जो मनुष्य का दिमाग है, जो हमारे अंदर कंप्यूटर फिट है, इसकी विंडो खुलती ही नहीं है। अब विंडो नहीं खुलेगी तो आप क्या काम करेंगे? विंडो तो पहले खोलनी पड़ेगी ना, या नहीं? आप में कई कंप्यूटर एक्सपर्ट बैठे होंगे। तो हमारी विंडो तब खुलती है जब मेरे को याद नहीं करना पड़ता, मैं आत्मा हूं कहना नहीं पड़ता है, मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा, सदा इसी स्वरूप में रहती। तो मेरे आस पास वाले, सामने वाले, अड़ोसी पड़ोसी सब देखते हैं ये योगी है ना, तो सदा शांत रहता। अब है इसका रिवर्स। हमारे मित्र संबंधी अड़ोसी पड़ोसी वो ये कहते, अरे आप तो योग सीखते हो, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो, फिर आप ऐसे नाराज हो जाते हो? ये है हमारा सर्टिफिकेट, तो पक्का कीजिए। कौन कौन राजयोगी बनना चाहता है? राजयोगी कौन कौन बनना चाहता है? हैं? ऐसे नहीं है ही, यही तो हम बता रहे हैं, नहीं है। बुरा नहीं मानना। राजयोगी माना जो सदा शांत, आत्मिक स्थिति में है, जिसको बाबा कहता है अशरीरी बनने का अभ्यास करो। हमारे अंदर 60-70% डिसिप्लिन अनुशासन अपने आप आ जाएगा अगर मेरा ये मंत्र कहे, स्वरूप कहे, स्वभाव कहे, पक्का हो जाए, मैं शांत स्वरूप सदा। पहले शब्द लगाइए सदा, फिर शांत। ऐसे नहीं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, वो राजयोगी नहीं है जो कहता रहता है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बाबा मैं शांत, बाबा कहता हां बच्चे तू शांत स्वरूप है, अब आगे बाबा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। बाबा कहता बच्चे अब आगे क्या प्रोग्राम है? बाबा क्या करूं, बच्चे कहना नहीं मानते, बाबा क्या करूं, मेरा धंधा नहीं चलता। बाबा भी मुस्कुरा देता है, कहता ये मेरा बच्चा कर क्या रहा है? एक तरफ मुझे कहता है मैं शांत स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, फिर कहता है मुझे बच्चे बहुत तंग करते हैं, स्त्री नहीं मानती, पति नहीं मानता, नौकर नहीं मानता, ये शांत स्वरूप है? मंदिर कोई भी हो, गणेश का हो, हनुमान का हो, देवी का हो, कोई भी हो, शिव का हो, चोर जाए, साधु जाए, स्त्री जाए, पुरुष जाए, व्यापारी जाए, मूर्ति तो अपनी ही स्थिति में रहती है ना। देवी है तो ऐसे ही है, गणेश जी बैठे हैं तो बैठे ही हैं। आप कहेंगे वो पत्थर की मूर्ति है, वो हमारी ही तो यादगार है, हम चैतन्य हैं, लेकिन हमारी स्थिति में स्थिरता नहीं है, इसलिए हम कह नहीं पाते हैं ये मेरी ही यादगार है। तो अगर मुझे सचमुच राजयोगी जीवन पसंद है, राजयोगी बनना है, आप कह के देखिए स्वयं को, अपने अंदर कहिए मैं राजयोगी हूं, देखिए आपके अंदर अपने आप साइलेंस आती जाएगी। एक मिनट सीधा होके बैठिए, जरा पीछे के सहारे छोड़ के, आप तो बहुत आराम से बैठे हैं, राजयोगी तो कैसे बैठेगा। मैं राज योगी हूं। दास आपको और कुछ नहीं कहना, एक ही संकल्प कीजिए, मैं राज योगी। ये अभ्यास लंबे समय तक चाहिए। हमने साकार में भी बाबा को देखा, 90 की एज में भी देखा बाबा। जब मधुबन में हम लोग आते थे, छोटा हॉल जिसको हिस्ट्री हॉल आजकल हम कहते हैं, अभी हम सब तो बैठने के लिए क्या करते हैं, आते हैं ना तो पहले देखते हैं कोई सोफा कुर्सी मिल जाए तो मैं बैठूं कहीं पर। बाबा 90 साल की उम्र में, 92 साल की उम्र में भी नीचे हॉल में आके नीचे धरती पर बैठते थे, एकदम ऐसे टांग पे। ऐसा नहीं कि बाबा कोई फोटो खिंचाने के लिए टांग पर टांग चढ़ा के बैठा है, बाबा बैठते ही ऐसे थे। और बाबा कहते थे आओ बच्चे, राज योगी की बैठक कैसी है। और हम तो क्लास में आते हैं, चाहे सेंटर में चाहे मधुबन में, मैं हूं राज योगी और सोफे पे आया और चल मेरे। क्या हुआ? मैं आपको अपनी रियल फीलिंग सुनाती हूँ। मुझे इतना विचित्र लगता है, अमृत वेले भी आएंगे, आते हैं, मुझे तो इतना लगता है। देखो मैं सवेरे देखती हूँ भाई बहन इतनी मेहनत करके, आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ रहे हुए हैं, भागे भागे आते हैं। मैं देखती हूँ कई तो मेरे से पहले पहुंचे हुए होते हैं और आते ही तो पहले राज योगी को अपना उठना बैठना चलना, क्या कहूं इसके लिए, सुधारना होगा, परिवर्तन लाना होगा। अब मैं पूछती हूं कौन कौन राजयोगी बनना चाहते हैं? अब समझ में आया? आप कहेंगे हम तो हैं ही राजयोगी, तो अभी मैं किस स्थिति में बैठी हूं वो आप अपने आप को स्वयं देखिए। ये तो भक्ति में भी मानते हैं, हठ योग वाले भी मानते हैं कि अगर आप ऐसे सीधा बैठते हैं, आपकी ये जो स्पाइनल है ये सीधी ऐसे रहती है, तो आपकी 60% बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाती हैं। आप एक दिन जरा एक्सपेरिमेंट करके देखना। हमने बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट अपनी बहनों के साथ, भाई बहनों के साथ किया है। मैं कहती हूँ अभी आधा घंटा ऐसे बैठो, अभी भी आप क्लास सुन रहे हैं ना, बैठिए ऐसे। जब मैंने कहा था तब तो ऐसे बैठे और अब फिर अपने आप ऐसे हो गए। मैंने तो कहा ही नहीं आपको कि रिलैक्स हो जाइए, आप क्यों रिलैक्स हो गए भाई? किसी को तकलीफ हो तो बुरा नहीं मानना, आप बैठिए ना सीधा ऐसे, क्यों नहीं बैठ सकते? हमारे मम्मा बाबा तो हमेशा ऐसे बैठते थे कुर्सी पर भी। आप बाबा का एक चित्र देखेंगे, बाबा कुर्सी पर बैठे हैं और ये एक टांग के ऊपर ऐसे, दूसरी टांग ऐसे रख करके बैठे हुए हैं, बिल्कुल सीधा बैठे हुए हैं। बाबा तो हमेशा ऐसे बैठते थे, ये है राजयोगी। हम तो कभी ऐसे, जैसे पता नहीं दांत में दर्द है, कभी ऐसे, पता नहीं कितने पोज बना के बैठते हैं। आप देखिए मैं आधा घंटा ऐसे बैठ सकती हूं, योग की गहन अनुभूतियां हम चाहते हैं लेकिन हम अभ्यास करना नहीं चाहते, तो गहन अनुभूतियां, योग की गहराई हमें महसूस नहीं हो सकती। आप देखिए हम सवेरे सवेरे नहा के फ्रेश होके तैयार होते हैं, उस समय देखो हमारा चेहरा शक्ल सब कैसा, कपड़े भी एकदम फ्रेश, बाल भी एकदम देखो कैसे टाइट होते हैं, हाँ चेहरे पे कुछ लगा के आते हैं तो चेहरा भी चमकता है। अब दिन में हम 10 बार मुंह धो लेते हैं, तैयार होते हैं, तो वो फ्रेशनेस तो नहीं रहती ना जो सवेरे थी। सवेरे भी मैं ही थी, अब भी मैं ही हूं, लेकिन वो फ्रेशनेस जो नहा के आई थी वो अब नहीं है। एकदम तैयार होके निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, एकदम टिप टॉप देखते हैं कोई मुझे देख भी रहा है या नहीं, मैंने अच्छी तरह से अपने आप को ड्रेस अप किया नहीं किया। तो वो एक आधा घंटा, पौना घंटा, डेढ़ घंटा किसी को तैयार होने में लगता होगा। आप देखिए कितना अच्छा हम सब तैयार होते हैं, और दिखाई देता है कि आप अभी अभी एकदम नहा के तैयार होके फ्रेश होके आए हैं। और हम लोग आधा घंटा एक घंटा योग में बैठते हैं, हमारे चेहरे से लगता ही नहीं है हम योग करके आए, क्योंकि अन्य 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 संकल्पों में जाते रहते हैं। तो अगर हम योग की गहराई में जाना चाहते हैं तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों का बैलेंस चाहिए, हमारी बैठक भी ठीक चाहिए, और मन और बुद्धि का भी संतुलन चाहिए। संकल्पों को कंट्रोल करना ही नहीं पड़ेगा, ये तो अपने आप ही कंट्रोल्ड है। अपनी बैठक पहले ठीक करें। कोई नीचे बैठते हैं तो ऐसे टांगे खड़ी करके ऐसे बैठ जाते हैं जैसे पता नहीं कहीं झाड़ू पोछा लगा के आए ऐसे बैठ गए। हम बाबा के बच्चे हैं, राजयोगी, राजयोगी हर घड़ी पक्का करो मैं राजयोगी हूं। चाहे हम मार्केट में जाएं, बाजार में जाएं, मैं राजयोगी। दूर से राजयोगी चमकना चाहिए, चमकना चाहिए। कोई मुझे वैसे कपड़े नहीं पहनने हैं, अब ये सफेद साड़ी है ना ये दूर से चमकेगी, बाजार में चले जाओ दिखाई देगा अरे ये ब्रह्मा कुमारी जा रही है। तो ये जड़ कपड़ा भी दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, मैं क्या कर रही हूं, तो मैं आत्मा सदा शांत स्वरूप हूं। ये हमें अपने अंदर दृढ़ता लानी होगी, प्रतिज्ञा करनी होगी, नियम बनाना होगा, क्या भी हो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, सदा शांत। हम इस मुंह से बहुत पाप करते हैं, मैं कई बार ये बात कहती हूं, करते हैं पाप या नहीं करते, बहुत पाप करते हैं। एक तो बोलते हैं उस पर भी कोई लगाम नहीं, अनाप शनाप जो आएगा बोलते रहेंगे, उसमें तो कोई ब्रेक फुल स्टॉप कॉमा लगता ही नहीं है। और बोलेंगे नहीं तो हम कहां व्यस्त होते हैं, खाने पीने में, मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं, आप देख लीजिए। और जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है, इस शरीर को उठा के ले जाते हैं अर्थी को, कहते हैं मुख अग्नि संस्कार। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको क्या करते हैं, मुख अग्नि देते हैं ना, और कहीं नहीं, पाँव में भी आग तो हम यहाँ पाँव में भी लगा सकते थे, सिर में कपाल क्रिया अलग करते हैं यहाँ भी लगा सकते थे, नहीं मुख अग्नि, क्योंकि ये मुंह से हम बहुत पाप करते हैं। लोभ वश खाएंगे, चोरी से खाएंगे, कहते हैं आज जरा ओवर डाइट, ओवर हो गया, खाते रहेंगे ओवर हो गया, बोल लेंगे फिर कहेंगे अरे मैं ना बोलता। तो चाहे हम खाएं چاہے پیئیں، چاہے بولیں، چاہے سوئیں، چاہے کام کریں، پہلے سمرتی سویم کو دلانی ہے میں ایک دم شانت شدھ آتما ہوں. حبش میں آ کے نہیں کھانا ہے، ہیرا پھیری نہیں کرنی ہے، جھوٹ یہ سب تو مجھے کہنا نہیں پڑے گا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے سچ بولنا ہے. پہلے اپنے ستیہ سوروپ کو ایمرج کرنا ہے، میں شدھ آتما. اب یہ جو شدھ آتما کا ابھیاس ہے اس کو سویرے شام آپ کریں، کر کے دیکھو میں کتنی دیر اسی سنکلپ میں بیٹھ سکتی ہوں شدھ آتما. اپنے آپ ہمارے چہرے پر روحانیت وہ جھلک آئے گی. دوسری بات، یدی ہم چاہتے ہیں ہمارا یوگ اچھا لگے، تو ہمیں اپنے سرو سمبندھ بابا سے جوڑنا نہیں، انوبھو کرنا ہے. جوڑنے کی کریا تو ہماری بھکتی میں بھی چل رہی تھی، ہم خوب گیت گاتے تھے، تمیو ماتشچ پتا تمیو، تمیو ودیاشچ دروینم تمیو، خوب گا لیا، تم ہی ہو ماتا پتا تم ہی ہو، تم مات پتا ہم بالک تیرے، وہ تو ہم نے خوب کر لیا. اب ریئلی دیکھو، میں نے اپنا ہر سمبندھ بابا سے جوڑا ہے. میں بھوجن کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئی، میں نے بلایا بابا آپ بھی آؤ، آپ بھی بھوجن کریں. میں خود ہی ہر چیز کا ٹیسٹ لے رہی ہوں یا بابا سے بھی پوچھ رہی ہوں کہ بابا آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہے نا، بابا تھوڑا سا آج یہ سبزی اچھی بنی ہے، بابا آپ بھی تھوڑا سا اور کھائیے. لیکن بابا سے تو میں تب بات کروں جب مجھے اپنے آس پاس والوں سے فرصت ملے. میں تو دوسروں سے، اپنی سہیلی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے بچوں سے، ارے تم اور لے لو، ارے آدھی روٹی تو اور کھا لو. بابا آج آپ نے مجھے کتنا اچھا برہما بھوجن دیا ہے، بابا مجھے تو یہ چیز بہت اچھی لگ رہی ہے، تھوڑی آپ بھی اور لیجئے نا. ہمارا بھوجن چارج ہو جائے گا. آپ کہیں گے شیو بابا تو کھاتا ہی نہیں ہے، رائٹ ہے، نہیں کھاتا ہے، لیکن ہم بابا کو یاد کر کے کھاتے ہیں تو اس میں وہ وائبریشن آتے ہیں. میرا نے زہر کا پیالہ پیا بھگوان کی یاد میں، امرت بن گیا. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم امرت کو زہر بنا دیتے ہیں، ہم اتنے شکتیشالی ہیں. شیو بابا آؤ، پیارے بابا آؤ، میں خوش نصیب آتما ہوں جس کے ساتھ بھگوان سویم بھوگ سویکار کر رہے ہیں. میں وہ خوش نصیب آتما ہوں جس کا ساتھی سویم بھگوان ہے. بابا کتنی مرلیوں میں کہتے ہیں کمبائنڈ سوروپ ایمرج کرو. کمبائنڈ سوروپ مانا شیو بابا اور میں جیوتی بندو آتما. آپ انیہ پرشنوں میں مت جائیے، بیج روپ کیا ہے، اشریری کیا ہے، روح ریحان کیا ہے، کرتے جائیے. میں آپ سے پوچھتی ہوں، میں دلی کبھی نہیں گئی، بھیا جی یہاں سے دلی جاؤں گی تو پھر کون سی ٹرین میں جاؤں گی، یا کون سے ہائی وے سے جاؤں گی، راستے میں کون کون سے اسٹیشن آئیں گے؟ آپ کہیں گے بہن جی آپ دلی جانے کے لیے اس ٹرین میں بیٹھ جائیے اور سیدھا آپ دلی پہنچ جائیں گے. और मुझे क्या चिंता लग रही है, ये कौन सा स्टेशन आया, ये आना चाहिए था नहीं, दिल्ली वाली ट्रेन में बैठे हैं, ये कंफर्म कर लूं। मैं भी बाबा की याद वाली गाड़ी में बैठी हूं, शिव बाबा आप मेरे हैं। अगर आपको लग रहा है बाबा मुझे तो रू रिहान करनी नहीं आ रही, बाबा मैं कैसे आपसे संबंध जोड़ूं, तो जब बाबा हमें गुण शक्तियां सब देते हैं, माता पिता शिक्षक बनकर आए हैं, मान लीजिए मेरा आज योग नहीं लग रहा, बाबा आज मेरा योग तो लग नहीं रहा, फिर बाबा अब आप मुझे राह दिखाओ ना, कैसे आपको याद करूं। बाबा ये मन बुद्धि तो आपसे जुड़ना चाहिए, बाबा आप ही तो मेरे मित्र दोस्त खुदा दोस्त हैं, मात पिता हैं, बंधु सखा हैं। अब आप धीरे धीरे ये एक प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, बताइए योग लगेगा या नहीं लगेगा। आप बहुत टेंशन में हैं, आज कहीं कुछ बाहर झंझट हो गया, परिवार में कोई बात हो गई, लेकिन आप बाबा को बताइए तो सही मेरी प्रॉब्लम क्या है। बच्चा भी अपनी प्रॉब्लम बताता है माँ को बाप को, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा क्यों, मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, नहीं तो मुझे फाइन लगेगा। माँ बाप प्रबंध करते हैं, शिव बाबा मेरा मात पिता है, मैं बताऊं ना बाबा आज मेरी क्या प्रॉब्लम है, आज दिन में बाबा ये बात हो गई, फलाने ने मुझे ऐसे कह दिया, लेकिन हम क्या करते हैं वो फलाने की फिर कहानी सुनाने लग जाते हैं, बाबा बस इस व्यक्ति का ये हो जाए ये ऐसा, बाबा को हम सुजेशन देने लग जाते हैं। अगर मैं ही इतनी बुद्धिवान थी तो मेरे आगे प्रॉब्लम आती ही नहीं, नहीं हूं इसलिए तो परेशान हूं। इसलिए बाबा को राय मत दीजिए कि बाबा इसका ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, बेटा सेट हो जाए, वो पति ऐसा कर ले, पत्नी ऐसा कर ले, नहीं बाबा को राय मत दीजिए, एक बार बाबा को कह दीजिए बाबा ये बात है, बाबा अब आप मेरे साथी हैं, बाबा बस मैं तो आपके साथ बैठा हूं, बाबा आप मुझे जिधर ले चलेंगे अब बराबर ये बात कीजिए, ना कि वो बात कीजिए। बाबा मैं आज गया था इंटरव्यू तो देने गया, ये प्रश्न मुश्किल आ गया, बाबा आप मुझे टच करते ना पहले, मैं पहले ही वो तैयारी, अरे अब वो समय तो चला गया, अब ये समय है शक्ति भरो, बाबा आप मेरे हैं मैं आपका हूं, कुछ भी बाबा हो ना हो मुझे तो आपके साथ रहना है। आप ही बाबा विश्व कल्याणकारी हैं। एक हमारा पोस्टर बना हुआ है यहां मिलता है, उसमें लिखा हुआ है तू मेरी महिमा करके तो देख, मैं तुझे महिमावान ना बना दूं तो कहना। क्या मैं एक घंटा बैठकर बाबा की महिमा कर सकती हूं? कोई अन्य बात नहीं। तो पहली बात, मुझे राजयोगी बनना है, सदा शांत रहना है, मैं शांत शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। दूसरा, शिव बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध है। तो हमारी कोई भी प्रकार की शक्तियों की संकल्पों की लीकेज नहीं होगी। आप इस संघर्ष में मत पड़िए, क्या करूं व्यर्थ तो पीछा ही नहीं छोड़ता, बाबा की याद में बैठती हूं दो संकल्प तो याद के आते हैं, फिर व्यर्थ चल पड़ता है, एक घंटा चला जाता है पता ही नहीं पड़ता है, थक जाते हैं, फिर सोचते हैं छोड़ो योग तो लगता ही नहीं। अरे ये कौन सी कहानी है, आपको कल जाना है, आपकी रिजर्वेशन नहीं है, आप कहते हैं जी तत्काल में टिकट ले लेंगे, आप तो कभी नहीं, तत्काल में तो मिलेगी ही नहीं, वेटिंग क्लियर होगी नहीं तो आप यहां थोड़ी बैठे रहेंगे, आप कोई ना कोई तरीके से टिकट करा के और चल देते हैं। इस दुनिया के गीत मत गाइए, इस दुनिया की गाथा बाबा को मत सुनाइए, बाबा मैं आपके साथ हूं, मैं आपका बच्चा हूं, आप जानी जाननहार हैं, आप सर्वशक्तिवान हैं। आप बैठिए ना थोड़ा सा सीधा होकर, बैठिए सीधा होके। कोई कोई तो परम धाम में अभी भी जा रहे हैं, क्या बात है। सीधा हो जाइए और आपके साथ आसपास में कोई परम धाम में जाने वाले हैं तो जरा जगाइए इनको। और बाबा से आप अपनी ये दिल की बात कीजिए, बाबा आप जानी जाननहार हैं, बाबा आप सर्वशक्तिवान हैं। ऐसा नहीं कि कोई मुझे स्पीडली कहना है बाबा आप शांति के सागर हो, प्रेम के, तो ये क्या हुआ। शांति के सागर हो, प्रेम के सागर हो, तो मैं अशांत क्यों हो रही हूं। शांति के सागर हो, साथ साथ अनुभव करूं ना, पवित्रता के सागर हो। आप मेरे सत्य मात पिता हो, आप दाता हो, वरदाता हो। जल्दी जल्दी संकल्प नहीं करने हैं, लेकिन जो संकल्प कर रहे हैं उसका अनुभव करिए। तो स्थूल और सूक्ष्म रूप से अपने को पहले तैयार करके योग में बैठे। आप अगर ये पहलू, तो योग की गहराई की बातें तो बहुत हैं, हम एक ही दिन में या इस एक घंटे में नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये दो बातें भी पक्की कर लें कि एक तो अब मैं कहीं भी बैठूं, चाहे अखबार पढ़ूं, किताब पढ़ूं, चाय पीऊं, मुझे सीधा होके बैठना है बाबा की तरह, फॉलो फादर। बाबा मम्मा ऐसे ही बैठते थे, मुझे भी ऐसे ही बैठना। तो चलें अंतर जगत की यात्रा की ओर। तैयार हैं सब? तैयार हैं? एक बार खड़ा होना चाहते हैं या योग करें? एक बार खड़े हो जाइए, जरा सब खड़े हो जाइए, ताकि आप अपने को स्ट्रेच करके, बहुत देर से बैठे हैं ना, कर लीजिए, स्ट्रेच कीजिए। हाथ ले जाइए ऊपर, कीजिए इस छत को पार, जरा कीजिए कीजिए। बैठ जाएं। और अब हम बिल्कुल सीधा होकर बैठेंगे। इस कुर्सी का सहारा हमें नहीं लेना, हमारा सहारा शिव बाबा है। योग के गहरे अनुभव करने के लिए सबसे पहले आज मैं अपने मन में ये पक्का करूं, मेरी अपनी बैठक, चाहे नीचे हो, कुर्सी पर हो, कहीं भी हो, मुझे बहुत एक्टिव अलर्ट होकर बैठना है। अपने मन को भी सीधी राह दिखानी है। हे मन और बुद्धि, आप मुझ आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हो। मुझ आत्मा को सहयोग देने के लिए, मुझ आत्मा का कार्य करने के लिए आपको मददगार बनना ही बनना है। मैं शिव बाबा का राज योगी बच्चा हूं। महसूस कीजिए, वाह, सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने सहज ही मुझ आत्मा को वरदान देकर इस संसार में घर गृहस्थी में रहते हुए राजयोगी बना दिया है। राजयोगी माना जो सदा प्रसन्न है, शांत है, शुद्ध पवित्र है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा के शक्तियां पाकर मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूं। आत्मा एक्टिव अलर्ट हो गई है। आत्मा की ज्योति जगी हुई है। मस्तक के बीचों बीच मैं शुद्ध आत्मा एकदम शांत पवित्र स्वरूप आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने स्वयं मुझ आत्मा को वरदान दिया है। योगी भव, पवित्र भव, योगी बनो, पवित्र बनो, बी होली एंड बी योगी। आत्मा की ज्योति प्रज्वलित होने से बहुत हल्कापन, प्रकाश महसूस कर रही हूं। सचमुच मन और बुद्धि एकदम शांत शुद्ध है। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु शिव बाबा के सामने हूं। Thank you. शिव बाबा सर्वस्व मेरा है, मैं शिव बाबा की मैं शिव बाबा की संतान एकदम ईमानदार वफादार फरमान बरदार हूं। आज्ञाकारी शिव बाबा, सचमुच मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूं जिसे सत्य पिता की पहचान मिली है। सत्य पिता ने मुझ आत्मा को अपनाया है, और मैं आत्मा अपने सत्य पिता की आज्ञाकारी ईमानदार वफादार फरमान बरदार बच्ची शिव बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा,
जब ऐसा प्रिय जीवन हो।